ज्ञान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन के लिए किसी ने कहा है कि लाइफ इज अ गेम, प्ले इट। बहुत ही खूबसूरत बात है ना कि जीवन एक खेल है, इसे खेलो। और हमारे यहाँ जो टीमें हैं आजकल आईपीएल में, उसमें एक टीम का एक बड़ा ही सुंदर सा पंच लाइन है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खेलबो लड़बो जीतबो रे। बहुत ही प्यारा है ना कि हम खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। शायद जीवन इसी का नाम है। और इसका आनंद भी तभी आता है जब हम इसे दिल से खेलते हैं और संघर्ष की स्थितियों में लड़ते हैं, जूझते हैं। और जब जूझते हैं, विजय प्राप्त होती है, तो सचमुच खुशी बहुत ज्यादा प्राप्त होती है। और यदि इस खेल में ईश्वर का साथ भी हो जाए तो फिर क्या कहने हैं, फिर तो हमारी पराजय कभी होगी ही नहीं। इसीलिए भ्राता जी भी हमें लगातार राजयोग के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि राजयोग सीधे सीधे हमें परमात्मा से जोड़ देता है और जीवन के इस खेल का जो आनंद है दुगना तिगुना 100 गुना मैं कहूंगा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए लगातार समाधान की ओर से आपको प्रेरणा मिलती रहती है कि राजयोग का अभ्यास करते हुए परमात्मा को अपने जीवन में शामिल करें। इस सुंदर प्रसंग के साथ, बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू।
एक ही लाइन में जीवन का बड़ा ही सुंदर मर्म है भ्राता जी।
जीवन एक खेल है, इसे खेलो, लेकिन एक चीज और, इसे एंजॉय भी करो। और
वैसे खेल एंजॉयमेंट के लिए ही होता है,
पर लोग गड़बड़ कर देते हैं जीवन के खेल को। अनेक लोग एंजॉय नहीं करते हैं, जैसे भोजन ही है, मान लो बहुत सुंदर भोजन है, स्वादिष्ट है, लेकिन ज्यादा खा लें तो एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। खाने को तो एंजॉय करेंगे पर रिजल्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअली तो हम जानते हैं, पर हम सबको बताना चाहते हैं कि भगवान अगर जीवन में साथी बन जाए, जीवन की यात्रा में वो हमारे साथ चलने लगे और वो हमें कह दे कि बच्चे ये बोझ क्यों लिए घूम रहे हो, भारी हो रहे हो, लाओ मुझे, और वो हमारे बोझ भी ले ले, रिटर्न में सफलता का वरदान दे दे, तो कितना सुंदर होगा। और यही चीज अब हो रही है। जो श्रेष्ठ योगी हैं, योग का अर्थ ही है भगवान को अपना साथी बना लेना। एक है कि हम भगवान के साथ रहें, दूसरा है उसे जीवन की यात्रा पर अपना साथी बना लें। और ये अनुभव हम में से लाखों के हैं, अभी करोड़ों के तो नहीं कहेंगे पर लाख के तो हैं, कि जिन्होंने भगवान को अपना साथी बना लिया है। अब देखिए, पांडवों के लिए, विशेष रूप से अर्जुन के लिए वेल नोन है कि भगवान उनके साथी बन गए थे, श्री कृष्ण उनके साथी बन गए थे। हर जगह कैसे उनको मदद मिलती रही, एक गाइडलाइन मिलती रही बहुत अच्छी, कठिन काम सरल होते गए। इवन जब वो वनवास में थे, जब कठिनाइयों में थे, तब भी उनको मदद मिलती रही, द्रौपदी को भी मदद मिलती रही, चाहे वो चीरहरण की बात हो, चाहे जब दुर्वासा अपने शिष्यों सहित भोजन करने आ गए थे तब की बात हो, और भी बहुत सारे वृत्तांत हैं। भगवान को साथी बना लेने के बाद उसकी मदद निरंतर हमारे साथ होती है, और हम अकेले न हो के परम सत्ता हमारे साथ जब कार्यरत होती है तो जीवन की यात्रा का आनंद ही कुछ और हो जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हम इस खेल में उन्हें अपना कोच बना लें।
बिल्कुल, कोच बना लें, या मैं तो जो मेरे अनुभव हैं, हम उसे अपना गुड फ्रेंड बना लें। और गुड फ्रेंड से सदा बात भी करते रहेंगे। फ्रेंड का नाता एक थोड़ा ओपननेस का नाता है ना, फ्रेंक है इसमें मनुष्य, ऑफिशियल नहीं है, कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना, कैसे भी मदद लेना, तो ये सबसे अच्छा नाता है। इस नाते से उसको अपने साथ रखना, ये वास्तव में राजयोग की एक बहुत सुंदर सी सरल सी विधि है। कभी हमने इस पे चर्चा की है, फिर करेंगे।
जी 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 जी, फिर भी एक बार बता दी, यद्यपि हम लोगों ने शायद चर्चा इस विषय पे की है, कौन नहीं चाहेगा मुझे लगता है संसार में कि भगवान उनका दोस्त बने या भगवान उनका कोच बन जाए, लेकिन ये फीलिंग, ये अनुभूति साकार में कैसे हो, बहुत गहन रूप से यदि ये बात मेरे अंदर समा जाए तब तो फिर मेरे बल्ले बल्ले हैं।
देखिए, बिल्कुल सत्य बात है कि सूक्ष्म चीज है
जी।
जिन साकार मनुष्यों को निराकार परमात्मा के साथ की अनुभूति करनी, पहले तो उन्हें कुछ समय निराकार होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वो सब लोग जानते हैं जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं कि हम इस देह में रहते भी देह से न्यारे एक चेतन अविनाशी सूक्ष्म आत्मा अपने को महसूस करें। हम ये महसूस करें, मैं इस मुख से बोल रहा हूँ, मैं मैं इन आंखों से आत्मा देख रही हूँ, ये फीलिंग हो, आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, फ्रॉम माई आईज, फ्रॉम माई माउथ, ये गुड फीलिंग हमें होने लगे, तो इसके बाद उससे हमें अपने नाते जोड़ने होते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे, और फिर उसे साथ रखने के कुछ अभ्यास हैं, और इसकी अनुभूति सहज हो जाएगी, क्योंकि हम तो उसे अपना साथी बनाना ही चाहते हैं, पर इससे भी सुंदर बात यह है कि वो हमारा साथी बनने को तैयार है। दिखाया वहां भी यही गया है कि श्री कृष्ण ने जब बहुत सारे काम मथुरा में अपने पूर्ण कर लिए, तब उसके फादर ने उसको कहा, भाई मेरी एक बहन कुंती भी है, वो मेरे से मिली ही नहीं बहुत दिन से, मुझे उसकी चिंता रहती है, उसके बच्चों की चिंता रहती है, मैं सुनता हूँ हस्तिनापुर में गड़बड़ हो रही है, कुछ पता करो। तो वहां दिखाया है कि श्री कृष्ण को खुद जैसे एक लालसा है कि वो जल्दी उनसे मिले और उनकी मदद करे, और जैसे मिलन हुआ बस फिर तो दो नहीं एक हो गए। तो ऐसे ही भगवान को भी हमसे मिलने की, हमें मदद करने की, हमें सहारा देने की, हमारे दुख हरने की वैसी तीव्र लालसा रहती है, क्योंकि हम उसके बहुत प्यारे बच्चे हैं, और वो अपने प्यारे बच्चों को कष्टों में देखना ही नहीं चाहता, उसे होता होगा ना, मैं ऑलमाइटी, मैं संसार के दुख हरने वाला, मैं सबके बोझ उठाने वाला, और ये मेरे बच्चे परेशान। तो उसकी बहुत इच्छा होती है कि मैं इन्हें निकाल दूं इन सब चीजों से, लेकिन निकलने वाले जरा ज्यादा फंसे रहते हैं।
जी, 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 जी।
तो इस पे हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन भगवान को साथी बनाना सचमुच बहुत सुंदर बात है।
जरूर ब्रदर जी, मैं चाहूंगा कि सचमुच इस पे बहुत विस्तार से हम चर्चा करें, क्योंकि आपने एक अच्छी बात दे दी है, इस पे सभी चिंतन तो जरूर करेंगे हमारे दर्शक, कि वो अपनी तरफ से बहुत कुछ देना चाहते हैं, हमसे साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन शायद हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमारी जो विधि है वो प्रॉपर नहीं है, या हमें थोड़ी सूक्ष्मता की ओर बढ़ना होगा। अरे चलिए, मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको। मेल भी योग से जुड़ा हुआ ही आया है हमारे पास। पहला, ये पावनी जी हैं, ये पूछती हैं कि जब हम सतरंगी योग करते हैं तो सात रंगों में से कौन से रंग से योग की शुरुआत करें, लाल से या बैगनी से? कृपया ये भी बताएं कि कौन सा रंग कौन से गुण से जुड़ा हुआ है। ये सतरंगी योग बता जी राजयोग से ही जुड़ा हुआ है।
एक्चुअली तो ये आजकल बहुत लोग जो योग सिखाते हैं, हमारे यहाँ भी वो आ गए हैं, तो उन्होंने एक सात रंगों से इसको जोड़ दिया है। वैसे शिव बाबा ने अपने महावाक्यों में ये बात कभी नहीं कही गई, जानता तो मैं भी हूँ, पर क्योंकि बाबा ने नहीं कहा, सीधा हमारा उससे नाता होता है, और आत्मा तो नॉन फिजिकल है और रंग फिजिकल होते हैं, तो दोनों का मेल भी बैठता नहीं है। आत्मा की जो चीजें हैं, भले ही जब आत्मा का साक्षात्कार किया जाएगा तो उसका वो रंग तो दिखाई देगा, लेकिन वो नॉन फिजिकल हैं, वो स्पिरिचुअल कलर्स हैं। तो चलो, इन्होंने पूछा है तो मैं थोड़े बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे राजयोगी बीमारियों पर इनका अभ्यास करते हैं, लेकिन इनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं, हमें तो शिव बाबा से उसकी संपूर्ण एनर्जी प्राप्त करनी है। सबसे नीचे हमारा गोनाल ग्लैंड होता है, और उसमें उसको शक्ति चक्र कहते हैं, उसका कलर लाल है, शक्ति का कलर लाल है
जी।
दूसरा प्योरिटी, उससे सेकंड जो होता है उसका गोल्डन, और जब आत्मा संपूर्ण प्योर हो जाती है तो उसका कलर सफेद, और तीसरा उसके ऊपर जो चक्र है सुख खुशी, उसका पीला, और चौथा हार्ट का है उसका प्रेम, और प्रेम का रंग हरा, और पांचवा जो है हृदय का होता है, जो शांति के लिए होता है, जो लंग्स को बहुत फायदा देता है, उसका लाइट स्काई कलर जो है वो है, और छठा यहाँ पर होता है इंडिगो, यानी गहरा नीला, उसका कलर है वो ज्ञान से जुड़ा है, और सातवां ऊपर है यहाँ, और वो बैंगनी कलर आनंद से जुड़ा होता है। इन सब चीजों से थोड़ी बहुत अनुभूति हो सकती है, पर सारे जो ये गुणों और शक्तियों के अनुभव हैं, ये मनुष्य के अपने संकल्पों से और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से होते हैं। लेकिन चलो, किसी को इसमें आनंद आता है, भिन्न भिन्न तरह के लोग साधनाएं करते हैं, तो इस तरह भी कर लिया जाए तो थोड़ा एडिशन हो सकता है।
बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी नवीनता के हिसाब से थोड़े मनोरंजक अभ्यास हो जाएंगे। एक चीज जो बात इन्होंने पूछी ब्रदर जी, क्या इन्हीं गुणों के साथ भी रिलेट किया जा सकता है, जैसे आपने इन चक्रों के साथ रिलेट किया, क्या गुणों से रिलेटेड?
वही मैंने बता दिया, एक एक चक्र का एक एक गुण भी है, जैसे हार्ट का प्रेम है,
जी जी,
प्रेम को हरे रंग से, शांति पांचवा जो चक्र है उसको, शांति को हल्के स्काई कलर से, यानी हल्का ब्लू, बहुत लाइट ब्लू, उससे जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ज्ञान को इंडिगो कलर से, गहरे नीले कलर से जोड़ दिया जाता है। ये सारे गुणों का ही वर्णन, प्योरिटी को ऑरेंज कलर से जोड़ दिया जाता है, सुख और खुशी को पीले कलर से और शक्ति को लाल कलर से।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये एक प्रकार से इनको रिलेट किया जा सकता है। अगला भी जो हमारे पास मेल है व्रता जी, दो एक जैसे हैं। उमेश जी दिल्ली से हैं, ये कहते हैं कि योग में जब मैं बैठता हूं तो मन एकाग्र नहीं होता, बैठते ही घबराहट होने लगती है, मन बेचैन होने लगता है, क्या करूं। और दूसरा अरविंद जी का जयपुर से है, ये भी कहते हैं योग में बैठते ही मेरे शरीर में भूकंप सा आने लगता है, झटके लगने लगते हैं, क्या करूं, ऐसा क्यों होता है। कई बार व्रता जी ऐसे विपरीत अनुभव भी कुछ
विपरीत अनुभव होते हैं। मेरे पास एक फोन कॉल आता ही रहता है, दो तीन बार आ गया कि जैसे मैं मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करती हूँ, पहले करती थी तो कुछ दिन अच्छा अनुभव रहा, लेकिन बाद में जैसे एक बैड फीलिंग शुरू हो गई, बहुत घबराहट। हालांकि निर्भय होने के लिए उसने प्रारंभ किया था, मास्टर सर्व शक्तिवान के अभ्यास से उसकी शक्तियां एक्टिवेट होने लगी, तो हो सकता है उसके अंदर भय का स्टोरेज भी बहुत ज्यादा हो, लंबे काल से आत्मा भयभीत रही हो या दूसरों को भयभीत किया हो, उसका रिवर्स भी भय के रूप में मनुष्य के पास होता है, तो ये भी जागृत हो जाता है, तो उसको भय, नर्वसनेस, एकदम बैड फीलिंग। ऐसे ही कईयों को जब वो योग अभ्यास करते हैं तो योग में जैसे ही एकाग्र होंगे तो ब्रेन में विशेष एक्टिविटी चालू हो जाएंगी, रिएक्ट करेगा ब्रेन, उसके कारण शरीर पर इफेक्ट होने लगता है, किसी को थ्रिलिंग होगी, किसी को घबराहट होगी, लेकिन इन सब चीजों से घबराना नहीं चाहिए। और सिंपली मैं आत्मा, ये देह अलग, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, आत्मा के सातों गुणों का चिंतन कर लें धीरे धीरे, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए जिससे ऐसी बैड फीलिंग होती है, चिंतन कर लें मैं आत्मा पीसफुल हूँ, इसको बहुत अच्छी फीलिंग मिला है, आई एम पीसफुल, पीस इज माई नेचर, पीस इज माई ट्रेजर, पीस इज माई माइट, ऐसे गुड फीलिंग करते चले तो धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ने लगेंगी। और यही बात कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि एकाग्रता एक ऐसा सब्जेक्ट है, मन न जाने मनुष्य ने कहां कहां भटकाया है, विकारों के पीछे भटकाया, देहधारियों के पीछे भटकाया, सांसारिक पदार्थों के पीछे भटकाया, कभी मनुष्य को सफलता नहीं मिली, मन बहुत विचलित हुआ, किसी मनुष्य की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, मन बहुत विचलित हुआ, किसी को और बहुत सारे कारण, हजार कारण हो सकते, व्यक्तिगत भी कारण होते हैं मनुष्य के जिससे उनका मन भटकता है, किसी देहधारी से प्यार हो गया, मन पूरी तरह से भटक गया, अब देहधारी ने धोखा दे दिया तो और भटक गया, ये सब बहुत होते हैं। आज की हंसी की बात कुछ मुझे याद आ रही थी, चलो खैर वो अब सब्जेक्ट नहीं है। एकाग्रता के लिए पहले आत्मा पर फोकस करेंगे और आत्मा का ये चिंतन जिसकी हमने चर्चा की थी, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, आत्मा को विजुअलाइज करें और उसके बारे में संकल्प करें। एकाग्रता एक बहुत सुंदर और विशाल सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा अलग अलग मनुष्यों की अलग अलग इसमें गतिविधि है, किसी ने अपनी बुद्धि में बहुत मैल भर लिया है, गंदगी भर ली है, कोई बहुत बुद्धिमान रहे तो बुद्धि का मिसयूज किया, बुद्धि को निगेटिव कर लिया, किसके एटीट्यूड्स निगेटिव रहे, तो विजुअलाइजेशन होता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ इमेजिनेशन करने चाहिए कि आकाश में मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूँ, पुष्पक विमान है, देवता बैठे, मैं बैठा हूँ उड़ रहा हूँ, अरे मैं तो फलाने ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ कार्य कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा अधिकारी बन गया, छोटे मोटे विजन भी बनाए यहाँ के, फिर आत्मा के विजन बनाने लगे धीरे धीरे, तो जितना जितना विजुअलाइजेशन बढ़ेगा सुंदर मन में चिंतन होगा। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, सभी दर्शक इसको अंडरलाइन कर लें, मन को हठपूर्वक रोकने की जरूरत नहीं, मन को अच्छे विचार देने लगे, उन विचारों को हम एंजॉय करेंगे तो मन स्थिर होने लगेगा। ये बात ध्यान रखते हुए ये छोटी सी प्रैक्टिस करें आत्मा की, आत्मा को विजुअलाइज करें, न विजुअलाइज हो, एक सेकंड भी हो, दैट्स ऑल, और आत्मा के बारे में अच्छा अच्छा चिंतन करते रहें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें, ज्ञान का चिंतन करें, तो ज्ञान चिंतन से, आत्म चिंतन से धीरे धीरे विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी।
जी जी जी, मतलब एक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही हमने योग शुरू किया तुरंत फट से एकाग्र हो जाएंगे या भगवान की किरणें आने लगेंगे, शायद ऐसा नहीं है। थोड़ा तो एक अभ्यास या एक साधना का पथ है, तो हमें मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। अगला मेल भ्राता जी हमारे पास लखनऊ से आया है, अंकुर जायसवाल जी का। ये कहते हैं कि मैं सरेंडर होना चाहता हूँ और आप लोगों की तरह ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बड़ा ही अच्छा सा विचार है कि मैं भी अपना जीवन समर्पित कर लूं।
हाँ, पर इनका परिचय इन्हें लिखना चाहिए था।
जी जी,
कितने समय से इन्होंने ज्ञान लिया, क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, क्या इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, इनके ऊपर परिवार की तो कोई जिम्मेदारियां नहीं है, ये किसी जॉब में है या अभी स्टूडेंट है, ये सब बातें जाननी पड़ती है। क्योंकि ऐसा है कि समर्पण जीवन, देखिए जिन्होंने भगवान से भक्ति में वायदे किए थे कि जब आप इस धरा पर आओगे हम आप पर बलिहार हो जाएंगे, उन आत्माओं को पुनः ये संकल्प उठता है कि जब भगवान आया है तो क्यों न उसके काम आ जाएं, अपने काम, अपने परिवारों के काम, अपनों के काम तो आते रहे, भगवान के काम आ जाएं तो शायद जन्म जन्म वो हमारे काम आया करेगा। ये सबसे सुंदर संकल्प है। बात केवल धन अर्पित करने की नहीं होती, जीवन अर्पित करना ये बहुत बड़ी चीज है। हमारा जीवन तुम्हारे लिए, हमारा मन तुम्हारे लिए, हमारी बुद्धि तुम्हारे लिए, हमारा सर्वस्व, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारे ऑल रिलेशनशिप्स विद यू, ओनली विद यू, ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, मैं सावधान करूं, जैसे संन्यास लेते हैं ना लोग, तो क्या होता है, एक व्यक्ति संन्यास लेता है विवेक पूर्ण होकर, ज्ञान उसे मिल गया, चलो शास्त्रों का ज्ञान, और उसे ये इच्छा है मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, वो साधनाएं करना चाहता है और इसमें वो सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है, और उसे ये पता होता है कि त्याग के बाद कठिनाई भी होती है, उन कठिनाइयों को सहन करने के लिए भी वो तैयार है। दूसरा ऐसा है कि पत्नी बहुत लड़ रही है, काम धंधों में नुकसान हो गया है, बच्चे योग्य नहीं हुए, वैराग आ रहा, कहां से मुसीबत पड़ गई, छोड़ो संन्यास ले लेता हूँ, इन समाज की सेवा करूंगा, कुछ बीमार लोगों का इलाज करूंगा, छोड़ दो, वो भी छोड़ कर जाता है। और कुछ लोग अचानक कुछ ऐसी प्राप्ति वहां दिख गई आजकल संन्यास में, वो सन्यासी लोग बड़े धनवान हो रहे हैं, छोड़ो यहाँ तुम क्या कर रहे हो, उधर चलो, लोग भी गैर व्यवस्था पहनने से लोग भी बहुत चढ़ावा चढ़ाएंगे, माल पानी बहुत आएगा, ये सब अलग अलग स्थिति।
मतलब ये शायद गीता में भी वर्णन जो है कि सतो रजो तमो संन्यास, ये वो
पहले इन्हें ये देखना पड़ेगा कि इनकी समर्पणता के पीछे इनका इंटेंशन क्या है, महान स्थिति बनाना, परमात्मा प्रेम में मग्न होना, अपने जीवन को उसकी सेवाओं में समर्पित करके सफल करना, क्या इनकी इच्छा है, या ये सोचते हैं उधर भी तो 8-10 घंटे काम करना पड़ता है, चलो प्रभु जी के यज्ञ में 8-10 घंटे काम करेंगे, ये भी किसी का विचार हो सकता है। किसी युवक का ये विचार होता है दुनिया में माया बहुत है, उससे बचे रहेंगे, एक प्रभु की प्रोटेक्शन में रहेंगे, इसलिए इधर आना अच्छा है। लेकिन श्रेष्ठ समर्पणता वही होती है जो एक महान लक्ष्य को लेकर चुनी गई हो, ये नहीं कि भाई चलो भोजन ही तो खाना, इधर भी खा लेंगे, सेवा ही तो करनी, लौकिक में भी करते हैं, इधर भी कर लेंगे, वो नहीं, एक महान लक्ष्य। क्योंकि समर्पण होने के बाद मनुष्य को कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो अब अकेला नहीं होगा, वो एक संगठन में होगा, तो इसको अच्छी योग साधनाएं भी करनी होगी। गुड इंटेंशन है, वी अप्रिशिएट, और ये है कि इसको पहले इस सेवा में हमारे यहाँ आना होगा, हमारे यहाँ सेवाएं चलती हैं, बहुत बहुत बड़े कार्य चल रहे हैं, कितने हजारों लोग यहाँ रोज आ रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं हैं, स्थूल सेवा भी है, तो लोगों को ज्ञान देने की सेवा भी है, कंप्यूटर की सेवा भी है, तो अकाउंट की सेवा भी है, किचन में बहुत सारी सेवाएं हैं, सिक्योरिटी की बहुत सारी सेवा, इतना बड़ा कार्य चलता है ना, देखे जहाँ 25,000 लोग रोज रहते हो, भोजन करते हो, वो तो एक पूरा टाउन हो गया,
डिपार्टमेंट
होते सब होते, तो ये अपने उस इंटेंशन को कायम रखे बहुत अच्छी बात है, और यहाँ सेवा करने आए, और सेवा के बाद ये खुद निर्णय करेंगे, ये यहाँ सबके साथ रहना पसंद करते हैं, इनकी हेल्थ अच्छी रहती है, सब इनको लाइक करते हैं, संगठन इनके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा, या थोड़ी बहुत इनको टकराव का सामना करना पड़ेगा, दो तीन बार आने के बाद फिर इनको निर्णय लेना।
बिल्कुल, मतलब अपने विवेक से निर्णय लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, और तब तक वहां भी सेवा केंद्र में नियमित रूप से जाते रहें। ऐसा ही मेल ब्रदर जी मुंबई से हमारे पास आया है, ये कहते हैं कि मेरी बिटिया ज्ञान में है और वो समर्पित होना चाहती है, पर मुरली में उसकी कम लगन दिखाई देती है। मैं कहती हूँ थोड़े समय के बाद समर्पित हो जाना, पहले ज्ञान योग की गहराई को समझ लो, लेकिन वो जिद कर रही है कि नहीं मुझे तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। कृपया सुझाव दें कि क्या किया जाए।
युवा काल में पवित्र जीवन जीना चाहती हैं तो सचमुच हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि जिस देश में ऐसी पवित्र कन्याएं हैं जो भगवान के लिए कार्य करना चाहती हैं, जो संसार की विषय वासनाओं में रत न रहकर पवित्र जीवन जीकर इस प्रकृति को और संसार को प्योर वाइब्रेशंस देना चाहती हैं। माँ भी इनकी बहुत समझदार है, जो ये चाहती है कि बच्ची जरा मैच्योर हो जाए, ज्ञान और योग में भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक सोचती है वो, क्योंकि इनको फिर संगठन में रहना है और जीवन तो एक लंबी यात्रा होती है, उसमें अगर ज्ञान योग का बल हमारे पास नहीं होता तो आगे चल के कठिनाइयां होती हैं। इसलिए लड़की को मैं वही राय दूंगा, भले ही सेवा केंद्र पे चार चार मास जाकर रहे और सब कुछ देखे, कार्य वहां जो करना इसको उसको भी करे, और अपने को अच्छी तरह चेक भी कर ले कि मैं इस इनडिसिप्लिन्स में, इस त्याग भरे जीवन में कहाँ तक आनंद पूर्वक जी सकती हूँ। ऐसे तो नहीं फिर मुझे मम्मी याद आएगी कि मम्मी बड़ा प्यार करती थी, घर में तो ऐसा ऐसा भोजन मिलता था अच्छा, यहाँ तो सात्विक सीधा साधा सा मिलता है। ये भी चीजें इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो बहुत अच्छा, वास्तव में तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। अभी भी हमारे यहाँ देखिए 450 कन्याएं आई हुई हैं, नहीं जो टीचर बनेंगी, जिनकी टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है, कोई हाईली एजुकेटेड हैं तो कोई बेचारे ने 10वीं क्लास तक ही किया है। सब तरह की बहने भिन्न भिन्न जाति धर्मों से सब 450 में है। ये नया बैच जो इस कार्य में अपने जीवन को समर्पित करने जा रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, और शिव बाबा की भी इनको मदद मिलेगी और ये आगे बढ़े।
बिल्कुल, मतलब थोड़े थोड़े समय सेवा केंद्र पे जाके देखिए, मतलब यही वाली बात रहेगी कि एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए कि हर प्रकार की परिस्थितियों में वो कितना सामंजस्य।
इसके अलावा भी हमारे यहाँ एक ट्रायल पीरियड रहता है, उसमें पहले 2 साल वो देख ले अच्छी तरह, नहीं तो बहुत सब लोग कन्याएं ऐसी होती हैं जिनको भाई ये डिसिप्लिन भारी लगते हैं, वो चाहती है हमने जॉब करें और प्योर लाइफ जिए, ये भी अच्छी बात होती है। फिर और 3 साल मिलते हैं और आप देख लो, और तब तक अगर आप सेटिस्फाई हैं तो दैट्स फाइन, और नहीं है तो फिर अपना मार्ग वो स्वयं चुन सकती हैं।
जी 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 प्रदीप जी, नीलू जी भोपाल से हमें लिखा, ये कहती हैं कि मैं 4 वर्ष से ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहे हूँ, मुझे अकेलेपन की बहुत फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरे लिए कोई है ही नहीं, इससे कभी कभी बहुत घबराहट की फीलिंग आने लगती है। तो वही बात शायद ब्रदर जी जो पहले बात हो रही थी कि कई बार हम इस मार्ग पे निकल तो पड़ते हैं लेकिन वहाँ एक परिवार है, एक समूह है, लेकिन यहाँ शायद आने के बाद ऐसा लगे कि अब शायद मेरे आगे पीछे कोई नहीं है केवल भगवान के, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाता?
देखिए जो लोनली फीलिंग है जी, इसके पीछे कई सीक्रेट्स हैं, मैं ओपन ही कर देता हूँ क्योंकि सब कोई चीजें जाननी चाहिए। जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है उसमें सेक्सुअल फीलिंग्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि बॉडी भी आउट ऑफ सेक्स से निर्माण हुआ है। किसी के बॉडी में ज्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, किसी में कम। ये यंग एज आने पर वो सेक्सुअल फीलिंग्स मनुष्य को लोनली फीलिंग्स का अनुभव कराती हैं। इसलिए योग अभ्यास के द्वारा जब तक उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी फिजिकल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में हमने बदलना नहीं सीखा, यानी हमारा योग अभ्यास बहुत अच्छा नहीं है, हम ईश्वरीय महावाक्यों में रुचि लेते नहीं है, तो ये अकेलेपन की फीलिंग होने लगती है। तब उनको ऐसा लगता है कोई नहीं हमारा तो ज्ञान सब अच्छा, इसे हम छोड़ नहीं सकते, फिर भी लोनली फीलिंग्स। तो इनको अपने योग अभ्यास को बढ़ाना चाहिए और एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि 4 घंटे रोज कुछ बैठकर कुछ क्रम में योग अभ्यास करेंगे तो परमात्म साथ के उसके प्यार के इनको अनुभव होने लगेंगे और ये फीलिंग समाप्त हो जाएगी।
चलिए बात वहीं आगे बढ़ता जी कि वो जो खुदा दोस्त है या कोच है वो हमारे साथ हो ले तो ये वाली फीलिंग रहेगी ही नहीं, और शायद इसकी सभी को आज के दौर में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों बात वहीं आके रुकी कि सचमुच भगवान को अपना दोस्त बना लिया जाए, उन्हें अपना कोच बना लिया जाए तो इस जीवन रूपी खेल में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। वैसे भी आप देखें कि जिसका कोच बहुत ही पावरफुल होता है यदि इंडियन टीम के लिए भी कोच ढूंढा जा रहा हो तो देखते हैं कि कौन बहुत ज्यादा अनुभवी है, और यदि बहुत ही अच्छा अनुभवी कोच मिल जाता है तो टीम की जीत निश्चित हो जाती है। खिलाड़ी भी निश्चिंत हो जाते हैं कि कोच पावरफुल है, अच्छे इंस्ट्रक्शन हमें देगा और उसके नेतृत्व में हम जीतेंगे। इवन यदि महाभारत की बात ले लें तो श्री कृष्ण जी भी कोच की भूमिका में ही थे, वो भी बताया करते थे कि क्या क्या किया जाए, किसके साथ कैसे युद्ध किया जाए। जीवन भी आज संघर्ष बन गया है मित्रों, एक युद्ध के मैदान में हम हैं। खेल तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा ऐसा लगता है कि शायद महाभारत के ग्राउंड में ही हम हैं और यहाँ भी युद्ध हो रही है। और यदि यहाँ पे परमात्मा का साथ मिल जाता है, उनका मार्गदर्शन मिल जाता है, तो सचमुच हम बहुत निश्चिंत हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे और हमारी जीत भी बिल्कुल पक्की हो जाएगी। इस विषय पे जरूर भ्राता जी से हम लोग प्रकाश लेते रहेंगे कि कैसे उन्हें अपने समीप लाएं या कैसे हम उनके समीप जाएं, क्योंकि एक और सुंदर बात निकल के आई थी कि वो खुद चाहते हैं कि हम उनके मित्र बन जाएं, हम उनके साथ रहें, या हमारे पास जो दुविधाएं हैं, तकलीफें हैं, वो उन्हें दूर करना चाहते हैं, लेकिन शायद एक बैरियर है, एक दीवार है जिसे गिराने की आवश्यकता है, और शायद ये देह ही वो बैरियर है। योग के माध्यम से आत्मस्थिति में हम सहज स्थित हो सकते हैं और उनके साथ का अनुभव कर सकते हैं। इस विषय पे जरूर कभी न कभी भ्राता जी से सुंदर प्रकाश लेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ, और हाँ, अपना ख्याल भी जरूर रखिएगा। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान।
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान।